ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین میں آل خلیفہ اور آل سعود کی فوجوں کے ہاتھوں نیت تھے شہریوں پر مظالم اور امریکی مداخلت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا ناظرین، آپ نے خبروں میں سنا ہو کہ دو روز قبل امریکی صدر باراک اوباما نے بالآخر فروری سے لے کر مئی تک کا انتظار کیا اور اس دوران بحرین میں نیت تھے اور بے گناہ شہریوں کا جو قتل عام ہو رہا تھا اس کو نظر انداز کیا، لیکن عالمی دباؤ یا یہ سوچ کر کہ اب شاید بہت ہو چکا ہے اور اب اس سے زیادہ خاموشی شاید ان کی ساکھ، اگرچہ ان کی ساکھ اور امریکی حکومت کی ساکھ عالمی سطح پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے زوم میں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے بحرین کی حکومت سے یہ مطالبہ کر ہی دیا کہ وہ عوام کے مطالبات پر توجہ دیں اور ان کا خیال رکھیں اور ظلم اور تشدد سے باز رہیں۔ گزشتہ فروری کے وقت سے جس بڑے پیمانے پر بحرین میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے سعودی عرب کی غاضبانہ موجودگی اور فوجی مداخلت کو امریکی انتظامیہ اور وائٹ ہاؤس نے حق بجانب قرار دیا تھا، تو اس میں کسی کو اب اس بات کا شک و شبہ نہیں رہتا کہ بحرین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل کی ایما پر ہی ہو رہا ہے اور یہ کام انجام دے رہے ہیں آل سعود اور آل خلیفہ۔ ضرورت کیا پڑی اس وقت باراک اوباما کو یہ کہنے کی کہ بحرینی حکومت بحرین کے عوام کے مطالبات پر توجہ دے؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی۔ صدیقی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی صدیقی صاحب، باراک اوباما کے بیان پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے، یہ اس کے جو اس طرح کے جو یہ بیان ہے، یہ آپ دیکھ لیں بھی پچھلے دنوں، بلکہ 2010 سے جب کہ ٹونیسیا میں جو سب سلسلہ شروع ہوا، ایک طرح کا جس کو میں نے آپ ناظرین کی خدمت میں اسلامک ریولیوشن کے نام سے پیش کیا ہے، اس میں وہ انہوں نے اس طرح کے جو کھوکھلا بیانات دیے تھے، اور وہ انہوں نے ہر ملک میں جب بھی لوگ مظاہرے کے لیے باہر آئے، اس میں کافی انہوں نے وقت لگانے کے بعد ایک ہلکا سا بیان دے دیا۔ یہ تو صرف ایک، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے کنزمپشن کے لیے ہے، اور ان کو کوئی ان جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ جو بحرین میں ہو رہا ہے وہ پوری امریکہ کی ایما سے، برطانیہ کی ایما سے، اور اس میں اسرائیل کی شمولیت اس میں ساتھ ساتھ ہے، اور ان کو کسی صورت سے یہ تو ایک طرح کے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ بھئی امریکہ جو ہیں اس بات کے کو پسند نہیں کرتے کہ بے گناہ شہریوں کا، جو کہ ایک خاموشی سے بغیر کسی تشدد کے مظاہرہ کر رہے ہیں اور جن کو چاہیے کہ انسانی حقوق جو ہیں، جو انہوں نے ابھی تک پامال کیے ہوئے ہیں، ان کو کچھ کم کیا جائے۔ خلیفہ فیملی میں ایک فیملی کے جس کے پورے سب کچھ پورے کنبے کے ملا کے لوگوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی 8-9 لاکھ لوگوں کے اوپر اس طرح سے حکومت کی ہوئی ہے، اور اب تو بہرحال انہوں نے ملوکیت بھی اس کو ایک طرح کا آپ کو کہہ دیا، جیسا کہ انہوں نے جو سلسلہ سعودی عرب میں وہی انہوں نے وہی شروع کر دیا بحرین میں، تو میں تو اس پہ ذرا سے توجہ نہیں دوں گا۔ ان کا بالکل یہ بالکل کھوکھلے ان کے الفاظ ہیں جو کہ ہر موقع پہ انہوں نے کہے ہیں۔ جب کوئی بڑا کام کرنا ہوگا ان کو، مثلا یہ کہ لیبیا میں تبدیلی لانی ہوگی حکومت کی وغیرہ کی، تو وہ تو دوسری بات ہے، لیکن آپ نے لیبیا کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی دیر کے بعد اس کو گدافی کو کرٹیسائز کیا تھا، تو یہ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اب मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक तरह का, अब जो अभी पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं वगैरह, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी वजह से अभी इनकी ये ज़रा और ज़्यादा मजबूत अपने को महसूस करने लगे हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद हो गई है कि अब अगले दफ़ा ये जो सदर का जो के इंतखाबात होंगे, मुमकिन है कि उसमें दूसरे टर्म के लिए भी वे आ जाएं। तो अभी आप देखें कि वो यहाँ पे किस तरह से ये इनके कारनामे होंगे। मुझे कोई इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि जो सऊदी मदाखलत है और जो इमारात के फौजी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जो के और जो बहरीन में पाकिस्तानी और उर्दून के और मुल्कों के जो सिपाही और फौजी जो ये एक तरह का मर्सिनरी की तरह से काम कर रहे हैं इनके साथ मिलके, इनमें इजाफा होने का भी मैं तो समझता हूँ अभी खतरा है, क्योंकि अब वो जो वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है वो
जी
उसको किसी हालत में उन्होंने अभी तय कर लिया है कि जो अक्सरियत है उसको उसके राइट्स उसके जो जो हकूक हैं उनको देने का उनका कोई इरादा नहीं है।
सिद्दीकी साहब, आप देखें कि इतने ही जुल्म हुआ या हो रहा है कि वो अमेरिका जिस कीमा पर यह सब कुछ हो रहा है वो बोलने पर मजबूर हो गया। कुरान करीम की खुलेआम बेहरमती की गई, कुरान करीम का एक नुस्खा टेरी जोन्स ने जलाया तो उस पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ, और बहरीन में सऊदी अरब जिसके हाकिम अपने को खादिमुल हरमैन कहते हैं, उसकी फौज ने, आले खलीफा की फौज ने जो अपने को मुसलमान कहते हैं, इन लोगों ने दसियों कुरान के नुस्खे नजर आतिश किए, लेकिन आलम इस्लाम और मुफ्तियाने दीन ने कोई बयान नहीं दिया। क्यों?
ये बहुत ही अफसोस और रंज का मुकाम है। और ना सिर्फ कि उन्होंने कुरान के नुस्खे वगैरह को की बेहरमती की, जैसा आपको इल्म है कि कितने मस्जिदों को वहाँ पे कुछ को शहीद किया गया, उनको उनको तबाह बर्बाद किया गया, कब्रिस्तानों में मज़ारों को जाके तोड़ा गया है, और उसके साथ साथ जो इंसान के हकूक़ हैं, यानी मसलन जो लोग जख्मी हुए जो मज़ाहरात कर रहे थे पुरअमन तौर पे, उनको अस्पतालों में ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और जो वहाँ के ऊपर जो इलाज में थे जिनका इलाज हो रहा था उन लोगों को निकाल निकाल के बाहर अस्पतालों से फेंका गया। और उसके साथ साथ आगे मैं आपको जैसा इल्म है कि जो जो डॉक्टर और नर्स वगैरह जो उनके इन लोगों का इलाज कर रहे थे उनके ऊपर सख्ती की गई है। तो इनका तो इनका जो जुल्म है उसके उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। इन्हीं हैरत की बात यह है सबसे बड़ी कि आप उसी लीबिया में ये देखें कि उन्होंने कहा कि गद्दाफी की फौज जो है वो अपने ही शहरियों को मार रही है, इसलिए हमको पहले नो फ्लाई जोन कायम करना है, उसके बाद फिर हमको उनकी बॉम्बिंग करनी है, फिर आखिर में अब ये है कि अब वो वहाँ के जो जो रूलर हैं उनको निकाला जाए। यहाँ पे बहरीन में देखें बिल्कुल वही हो रहा है कि बल्कि बहरीन में तो उससे कहीं कम है, क्योंकि बहरीन में वहाँ के शहरियों ने कोई असलहा नहीं लिया, उन्होंने कोई किसी बहरीन के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पुरअमन मजाहरा किया। उसके बावजूद जो बहरीन के फौजी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 1500 सऊदी और इमाराती फौजों को मिला के बुला के वो अपने ही शहरियों को कत्ल गारत और उनकी बेहरमती और करा रहे हैं। मतलब 800-900 से ज़्यादा इस वक्त जो बहरीनी हैं वो उसमें उनके जेलों में हैं, और उनकी उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी खातून भी शामिल हैं। ये तो इनकी दोहरी पॉलिसी की इंतहा हो गई है। और आपने जैसा फरमाया वो बहुत सही फरमाया कि हैरत की बात यह है कि इस तरह से जुल्म यानी बेहरमती हो रही है, जो इस्लाम के जो कानून है उनको उनको तोड़ा जा रहा है, और कहीं से किसी किस्म का कोई कोई बयान किसी आलिम का या किसी का नहीं आ रहा, बल्कि उसके साथ साथ तो ये है कि जो जो बात सुनने में आ रही है वो ये कि वो ईरान को एक तरह से कोशिश कर रहे थे ईरान पे इसकी जिम्मेदारी डालने का। हालांकि अभी वो बिल गेट्स साहब ने जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ईरान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने ये भी सुना होगा कि इन खलीफा लोगों की फैमिली ने और इनके वजीर आजम ने कहा है कि अगर आपको यहाँ हमारे मुल्क के कानून पसंद नहीं है आप लोगों को शहरों को तो आप यहाँ से चले जाएं। तो ये तो बिल्कुल इन्हीं अंधेर हो रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि जब तक वेस्ट जो के डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की यानी इंसानी हकूक की को वो कहते हैं कि हम उसकी हिफाजत करते हैं, उन्होंने ही कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनके साथ ही होता है कि वो सिलेक्टिव तौर के ऊपर
जी बहुत
जहां पे
शुक्रिया
उनको
आपका।
अपना फायदा नजर आता है कि रजीम चेंज का, हुकूमत बदलने का, वहां तो उसमें वो शामिल होते हैं, उसके बाद
बहुत
अगर
शुक्रिया
नहीं
संजय
है
साहब।
तो वो खामोश अलग बैठे रहेंगे और खोखले खोखले बयान जैसे कि वहां सामने दिए वैसे मिलते रहेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जर्मनी से मुमताज दानिश्वर और सियासी उमूर के माहिर डॉक्टर असलम सैयद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब यकीनन आपने कुछ गुफ्तगू लंदन स्टूडियो मौजूद हमारे मेहमान सिद्दीकी साहब की सुनी होगी। मगरिब का बहरीन के ताल्लुक से सिलेक्टिव रवैया क्यों?
इसलिए कि बहरीन जो कुछ वो कहते हैं करता है, बहरीन ने उनको अड्डे फराहम किए हुए हैं, बहरीन ने वो तमाम सहूलियात फराहम की हैं जिसकी मदद से ना सिर्फ वो दूसरे मुल्कों पर हमला कर सकते हैं बल्कि खुद इन्हीं की जो हरकत हैं उन पे भी नजर रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ ये कि इस इलाके में जिस तरह की हुकूमतें वो चाहते हैं तो ये एक तरह का एक इनकी एक धौंस है उस इलाके में। तो यकीनन उस इलाके से आपको याद होगा हमने पहले भी बात की थी कि बहरीन में ये हुकूमत की तब्दीली नहीं पसंद करेंगे और उसको हासिल करने के लिए अपने मकासद को हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो मुमकिन हो सकता है। और आप देखिए दुनिया की बचने के लिए, हालांकि दुनिया को सब पता है कि सऊदी अरब ने किसको कहा कि यहाँ पे फौजें भेजें अपने, तो सऊदियों से उन्होंने वो करवाया है वहां पे जो वो खुद करना चाहते थे दर हकीकत लेकिन कर नहीं सकते थे। तो ये
अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते?
इसलिए नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि लोग फिर इनके अपने अवाम कहते कि एक तरफ तो आप जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ये ऐसी हरकतें करते हैं। अब इससे ये हुआ कि उनके दो मकासद पूरे हुए इससे, एक तो ये कि मुसलमानों को जमहूरियत पसंद ही नहीं आती और हमने तो वहां को दखल नहीं किया, एक और मुसलमान मुल्क ने आगे वहां जमहूरियत की रूह को कुचला है। यानी दानिश्वर जब गुफ्तगू करेंगे इस पे, जब ये तजिया निगार इस पे बात करेंगे तो अमरीका को तो इल्जाम नहीं आएगा, मगरब की किसी एजेंसी को इल्जाम नहीं आएगा इसका। वो यही कहेंगे कि देखिए हमने कजाफी के खिलाफ मदद की लेकिन यहाँ पे एक और मुसलमान मुल्क ने उनको उस जमहूरियत की जो रूह थी उसकी जो जो तहरीक थी उसको खुद कुचल दिया। तो जब मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्कों में नहीं चाहते तो इसमें हम तो बरी जिम्मा है, ये इन्होंने चालाकी की है इसमें बहरीन में। वरना ये है कि बहरीन की सूरत हाल किसी तौर पर भी बल्कि बदतर है, बेहतर नहीं है जो कोई दूसरे ममालिक में हो रहा है जहां पे लोग जमहूरियत की लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ ये इनको नजर आता है कि ये सऊदी के खास, सऊदी खानदान के, उनके जो शाही खानदान है उनके ये खास लोग हैं जो बहरीन में बैठे हुए हैं और एक माइनॉरिटी बिल्कुल एक छोटा सा ग्रुप जो है वो एक कसीर तादाद के अवाम पे हुकूमत कर रहा है जिनके ना कोई हकूक है, कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें उनको जॉब नहीं मिल सकता। और अब आपने सुना होगा ये खबर के मुजाहिरीन में से चार नौजवान हैं बिल्कुल वो 20 और 21 22 साल के बच्चे जिनको उन्होंने सजाए मौत दे दी है।
जी डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल बहुत ही आमियाना से पूछना चाहूंगा लेकिन चूंकि हमारे नाजरीन है सभी देख रहे हैं, हर तरह के लोग देख रहे हैं, यानी मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि शायद मुझे बेहतर तरह से आपकी तरफ से जवाब मिल सके, क्या मसाजिद भी शिया और सुन्नी की हो सकती है?
खुदा का घर है वो मसाजिद सब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जैसे खाना काबा ना किसी शिया का ना सुन्नी का है, इसी तरह मसाजिद भी ना शिया है ना सुन्नी है, वहां अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, वहां पे इबादत होती है, खुदा का घर है।
ये बात तय हो चुकी डॉक्टर साहब कि ये अल्लाह का घर है, ये तय है, इसमें किसी को शक नहीं। और लेकिन ये जो मुफ्तियान कराम है इन्होंने फतवा क्यों नहीं दिया मसाजिद की बेहरमती, जो मसाजिद को दसियों की तादाद में बहरीन में गिराया गया है?
जी ये बहुत अहम सवाल है और सवाय इसके कि इस पे हम अपना वो जो है वो सर पीते और रोएं और कुछ नहीं कर सकते, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया की जो धौंस है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बल्कि पाकिस्तान की वजीरे जो खारजा है उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया था कि ठीक है कुछ लोगों को हमारा ये पसंद नहीं आएगा फैसला, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है। इंटरेस्ट को वो डिफाइन इस तरह से करती हैं कि अगर हम ये ना करेंगे तो हमारा तेल बंद कर देंगे, हमारी वो तरसील जो है ऑयल की वो बंद कर देंगे। सबसे बड़ा वेपन सऊदी अरेबिया के पास ये है, और दूसरा बड़ा वेपन जो सऊदी अरेबिया के पास है वो ये है कि सो कॉल्ड खादमैन और शरीफैन जो भी वो कहते हैं अपने आप को हरमैन के, वो खादिम बने हुए हैं, हालांकि ये डिक्टेटर हैं, इनको कोई नहीं है। वहां आप छोड़िए ये बात, तो वहां इन्होंने क्या कुछ किया है, कितनी मसाजिद गिराई है मदीना मुनव्वरा में, कौन कौन सी ऐसी वो जगहें थी जहां पे हर कदम पे सजदा करने को जी चाहता था, जो इन्होंने मिसमार की हैं, महज इसलिए कि या किसी, या हमारे नबी की वहां पे कोई बात थी या किसी मासूमीन में सी थी। इवन सहाबा की बातें भी इन्होंने, आप छोड़ दीजिए शिया सुन्नी फसाद को, हर वो तारीखी इमारत, हर वो हमारी लेगेसी जिसपे हम फख्र कर सकते और अपना सर झुका सकते, उन्होंने उसको मलिया मेट कर दिया। किसी आलम ने फतवा दिया उसके खिलाफ? यही है हमारी मुनाफकाना पॉलिसी जिससे मगरब भी फायदा उठाता है और खुद हमें भी शर्मिंदगी होती है इस पे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। सिद्दीकी साहब, क्या ये हमारी मुनाफिकाना पॉलिसी है या हम इस तरह की हरकतों से इसराइल और अमेरिका और दुश्मनान इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और उनके कहने पे सब कर रहे हैं? आप देखें कि उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी जो है वो ये कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अब अगर मुफ्तियाने दीन ही जो नाम निहाद मुफ्ती हैं वो इस तरह का फतवा देंगे कि मुसलमानों के फलां फिरके के अफराद को कत्ल करना जायज़ है और फलां फिरका जो है वो काफिर है, तो जाहिर है कि इस तरह की बातों से इख्तलाफ पैदा होता है, और जब इख्तलाफ पैदा होगा खूनरेजी होगी तो इसका फायदा किसको होगा? उस पर हम आपका तबसा जानना चाहते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि ये जो जिस फिरके से सो कॉल खादमैन हरमैन शरीफैन का जो ताल्लुक है, और वो उनका तो अक्सर ये ख्याल है कि एक के इस्लाम में चंद फिरके जो हैं वो इस्लाम के बाहर हैं, और बल्कि सुनियों में भी वो ये कहते, वो उनको बहुत सिलेक्टिव हैं वो लोग। उनकी तो अब बात ही छोड़ें, अगर उनके बारे में बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आपने सुना कि सबसे बड़ी हैरत की बात है कि इस किस्म के जो, जबकि वो पीटर जोन्स ने, टेरी जोन्स ने सॉरी, जब वो एक कुरान की कॉपी चलाई थी तो इतना शोर हुआ था जैसा आपने फरमाया, और यहाँ पे मस्जिदों में बेहरमती हो रही है, यहाँ पे मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, यहाँ के ऊपर कुरान जो है वो जलाए जा रहे हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़ा जा रहा है, और कोई कुछ आगे बढ़ के नहीं कहता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इन्होंने, ये सऊदियों ने जो प्रोपेगेंडा इतना इस हद तक बढ़ गया, और ये पूरा सहयूनी अमरीकी और इन लोग, सऊदी जो हुकूमत है इसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले, उनका कोई इस्लाम से उनको कोई 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 ताल्लुक नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका किरदार अगर आप देखें तो इतना गंदा और शर्मनाक है कि यहाँ पे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ ये पूरे के पूरे सहयूनी और अमेरिका के ये लोग एजेंट्स हैं, वही करते हैं जो अमेरिका उनको हुक्म देता है। देखिए ये जो इसका रेमंड डेविस का जो किस्सा था, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब उसको उन्होंने रिहा कराया, उसके वो ब्लड मनी खून भाई के पैसे जो उनको दिलवाया गया, तो अमेरिका को के साथ उनका ये मुआहदा हुआ था कि हम ये तुम्हारे रेमंड डेविस को रिहा करवा देंगे, लेकिन अब हम लोग जो हैं बहरीन में जा रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहिएगा। और सऊदियों को क्यों, आप ये सोचिए कि सऊदी क्यों बहरीन गए? उसकी वजह ये है कि उनको खतरा ये है कि बहरीन में अगर कुछ कुछ हुकूमत में तब्दीली आ गई या वहाँ के ऊपर जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को मिल गए, तो उसके तो उसका सबसे बड़ा असर जो है सऊदी हुकूमत पे पड़ेगा। आपको मालूम है कि ईस्ट में, मैंने उनके मशरक में ऑलरेडी कितने कितने दफ़ा इन सऊदी हुकूमत के खिलाफ लोगों ने कोशिश की थी मुजाहरा करने की, जो उसको बहुत सख्ती से दबा दिया गया। तो इनको खुद सऊदी हुकूमत को खुद फिक्र है कि अके यहाँ अब बिल्कुल उनके डोर स्टेप के ऊपर वो जो है ये हो रहा है, और वो उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने वो अपने फौजी भेजे और इस अमेरिका को, रेमंड डेविस को रिहा करवा के उन्होंने अमेरिका से एक तरह की छुट्टी ले ली कि वो जो है वो उसको इन्वेट कर सकें, इन्वेट करते हैं बहरीन को, बहरीन में आ जाएं, वो जो उन्होंने किया। तो ये तो बहुत एक तरह का इतनी बहुत बड़ी इनका इनका प्लान है कि किस तरह से अपने को सऊदियों को बचा के रखा जाए वहां की जो पॉपुलर अपराइजिंग होगी, और वो वहां पे जो सऊदी अरब में जो 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 अपराइजिंग होगी, जैसा आपको याद होगा कि बहरीन में जो लोग शुरू में और अभी भी जो मज़ाहरे हो रहे हैं उसमें सब सब ग्रुप शामिल है, उसमें सुन्नी भी हैं शिया भी हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि कोई एक ही फिरका कर रहा है। ये तो शुरू से हमने अर्ज किया और हमको इसका पूरा इल्म है कि कोई इसमें इस वो नहीं था। दोनों दो सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान दोनों इन खलीफा फैमिली के खिलाफ थे और अभी भी हैं, और वो दोनों ये चाहते हैं कि जो डॉक्टरों को उन्होंने पकड़ के जेल में बंद किया है और जो नर्सों को मारा, वो सब शिया डॉक्टर और शिया नर्सें थोड़ी, उसमें सब शामिल हैं। और जो उन्होंने गवर्नमेंट के जॉब से लोगों को निकाला है, इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट को, उसमें सब शामिल हैं। तो ये मकसद मेरा कहना का ये है कि ये सऊदियों की को डर और खौफ इतना है कि उनके यहाँ कुछ ना हो जाए, उसके लिए चाहते ही हैं कि जो ये जो इस वक्त जो अपराइजिंग है वहाँ पे बहरीन में, उसको वो दमाएं किसी सूरत से। और उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि उन्होंने अमेरिका को खामोश किया हुआ, मतलब ये कि अमेरिका तो उनको वैसे भी नहीं रोकता, लेकिन ये कि उन्होंने अमेरिका को, चूंकि रेमंड डेविस को रिहा करा के एक अपना एक प्लस पॉइंट अपने पास रखा, ये बहुत 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 मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है इसमें, इस पस मंजर में बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। डॉक्टर असलम सैयद साहब, आप देखें कि सऊदी अरब इस वक्त इलाके में जो आवामी बेदारी और इस्लामी बेदारी की लहर है उसके नरगे में है, या यूं कहा जाए कि आवामी और इस्लामी इनकलाबात के नरगे में है। उसकी सरहदों का अगर यकीनन आपने मुआयना किया होगा और देखा होगा, बगौर मुताला किया होगा कि एक तरफ यमन, दूसरी तरफ मिस्र, तीसरी तरफ बहरीन, चौथी तरफ अगर आप और भी बाज़ रियासतें, हर तरफ से आवामी बेदारी की लहर उठी हुई है। क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब, जहां के 17 शहरों में गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान मुजाहरे हो चुके हैं, बाज शहर ऐसे हैं, बल्कि बेशतर शहर ऐसे हैं जहां शिया मुसलमानों की या तो तादाद बिल्कुल नहीं या है, अगर है तो बहुत कम, अलकतीफ को छोड़ दें जो मशरक़ी इलाका है, रियाज में देखें वहां शिया मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है, जद्दा में देखें शिया मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। तो जो 17 शहरों में मुजाहरे हुए हैं और अभी आज ही और कल जो मुख्तलिफ शहरों में वहाँ की ख्वातीन ने मुजाहरे किए हैं और अपने हक रायदही का मुतालबा किया है कि हमें वोट देने का हक दिया जाए, इसके अलावा भी बारह जो वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या बहरीन में या यमन में फौजी और गासिबाना मुदाखलत करके अपने आप को आल सऊद की हुकूमत इन अवामी इनकलाब से महफूज रख सकेगी?
नहीं, ये कभी नहीं हुआ। कुछ देर तक इनको एक मिलता है, वो जैसे अल्लाह ताला शैतान की रस्सी दराज करता है, कुछ वक्त के लिए इनको यकीनन ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए, लेकिन ये कामयाबी नहीं है बिल्कुल। ये इनको देखिए, ये प्रिजन्स भी सेफ नहीं रह सकती। आप मुल्कों की और कौमों की बात कर रहे हैं, प्रिजन्स को भी लोग हमला करके छुड़वा लेते हैं वहां के कैदियों को, तो अगर ये प्रिजन भी बनाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया की ममलकत को, तो वो उसमें भी कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आप कब तक लोगों को धोखे में रखेंगे? लोगों को आपने क्या दिया है, सवाल पूछते हैं लोग। और ये जो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये एक इनकलाबी दौर है, जिसको हम कहते हैं ना खामोश रेवोल्यूशन का दौर है ये, जिसमें लोगों को इल्म है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के क्या हकूक हैं, क्या हमें हमारी हुकूमत वो हकूक फराहम कर रही है या नहीं। ऐसी सूरत हाल में आप कब तक दबाएंगे अवामी इस शऊर की लहर को? नहीं दबा सकते। ये जल्द या बदेर इनको होश आएगी और उस वक्त लेट हो चुका होगा, फिर इनका फिर वही हशर होगा जो इनकलाब में होता है, ऐसी मोनार्कीज का हशर। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि ये जो हम दोहरा मेयार, हम अक्सर मगरिब की बात करते हैं कि उनका दोहरा मेयार है, मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि उनका मेयार कितना दोहरा है, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है, उनके दोहरे मेयार से उनको फायदा पहुंचता है, जहां पे वो चाहते हैं जो चाहते हैं अपने अवाम को बता देते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं ये समझते, हम में कब ये शऊर आएगा कि हमारे दोहरे मेयार से हमारे अपने अवाम को, हमारी अपनी शिनाख्त को, हमारी अपनी कौमों को जो नुकसान पहुंच रहा है वो उससे बदरजहा ज्यादा है जो ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुझे जो मुनाफ़त उसमें नजर आई है, उसमें ये नजर आई है जो सऊदी अरब करता है और जो सऊदी अरब दावा करता है कि वो ये जो होली प्लेसेस हैं, हमारे मुकद्दस मकामात हैं, उनका रखवाला है और उनका खादिम है। खादिम ऐसी हरकतें नहीं किया करते, इनको अकल आनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कभी ये सोचा भी होगा इन्होंने कि हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी कौम की तरफ क्या है और क्या नहीं है।
बहुत शुक्रिया,
जब
मैं फिर
कोई
आ जाऊंगा
अपनी
डॉक्टर साहब, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में, टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान में स्कूली तलबा की तंजीमों की यूनियन के सेक्रेटरी जनाब अहमद खलीली साहब। खलीली साहब अस्सलाम वालेकुम। खलीली साहब, जब से बहरीन के हालात और वहाँ के बहरान शुरू हुए, या यूँ कहा जाए कि जब से बहरीन के नित्य आवाम को आल सऊद और आल खलीफा के हाथों कत्ल किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर ईरान में तलबा की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बहरीन के आवाम, वहाँ के स्कूली तलबा, वहाँ के लोगों के लिए हमायत का ऐलान किया जा रहा है। ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, काबिल तारीफ भी है, ईरान के स्कूली तलबा की तरफ से बहरीनी बच्चों की हमायत में मुजाहरे करने का, बहरीन की आले खलीफा हुकूमत पर दबाव डालने में आप इस सिलसिले को कितना मौसी समझते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल हमसे किया है, मैं आपको ये बताते चलूं कि हमारे तलबा ने और हमारे तलबा की यूनियन ने जो ये काम शुरू किया है, ये तहरीक शुरू की है, ये एक बड़ी उम्दा तहरीक है और हमने बहरीन के अवाम की हिमायत शुरू की है क्योंकि वो बड़े मजलूम अवाम हैं। बहरीन में एक इंसानी अलमिया रूनुमा हो रहा है और बहरीन में इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, इस्लामी उसूलों को पामाल किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इंसानों के इब्तदाई तरीन हकूक भी मलियामेट किए जा रहे हैं, उन्हें पामाल किया जा रहा है और इस्लाम और कुरान ने जो उसूल मुय्यन किए हैं इंसान को हकूक देने के बारे में, बहरीन की हुकूमत आले सऊद के साथ मिलकर उन हकूक को पामाल कर रही है। हमारे तलबा की यूनियन ने इन इकदामात की मजम्मत करने की तहरीक चलाई है और हमारे तलबा ये चाहते हैं कि सारी दुनिया इस बात को सुने, बिलखसूस बहरीन के हुक्काम इस एहतजाज को देखें और ये समझें कि हक की आवाज ईरान से उठाई जा रही है और ईरान वाले मजलूम बहरीनी अवाम की हिमायत कर रहे हैं और आले खलीफा के तशद्दुद और मजालिम की मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बहरीनी अवाम को हक हयात है, उन्हें आजादी अकीदे का हक है और इस बात पर हम ताकीद करते हैं। लिहाजा हमारे तलबा की तहरीक एक तरह से मजलूम बहरीनी अवाम की हिमायत है, उनके साथ हमदर्दी है, उनके साथ यकजहती है।
बहुत शुक्रिया, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी साहब, जैसा कि भी आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू मुलाहजा की, आपने सुना होगा कि बहरीन के बाज उन स्कूलों पर भी, बल्कि मुतअद्दिद स्कूलों पर हमला किया गया, खासतौर पर लड़कियों के जिनकी उम्रें 13 से 14, 15, 16 साल तक की थी, उनको गिरफ्तार किया गया। बेक वक्त 40-40, 50-50 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। स्कूली तालिबात और लड़कियों पर हमला करके ये क्या पैगाम देना चाहते हैं बहरीन के आवाम को और क्या हासिल करना चाहते हैं?
ये तो एक तरह की जिसको कहते हैं स्टेट की दहशतगर्दी है, स्टेट टेररिज्म, कि जिसमें बच्चों को के दिल में डर और खौफ पैदा किया जाए कि आगे जो बढ़ के वो जवान हो तो फिर उनकी हिम्मत ही ना हो कि किसी इस किस्म के जो मजारात है उसमें हिस्सा ले सकें। इनको अभी से डरा धमका कर, खासतौर पर लड़कियों को, और आपको मालूम है कि हम लोगों को कितनी फिक्र होती है जबकि हमारी बच्चियां खासतौर पर इस उम्र की जो हैं जब अगवा कर ली जाती हैं कि न मालूम उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, अब अल्लाह जाने उन लोगों के साथ सलूक क्या हो रहा है, और वो उनका मकसद यही कि शुरू से उनको इतना डरा दो, सहमा दो कि आंदा जब बड़ हों तो उनकी हिम्मत नहीं हो कभी भी किसी किस्म का भी मजहरा करने की। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये बच्चों में मैं इस किस्म का ये डर पैदा करने के लिए काम हो रहा है। उस सिलसिले में ये आपसे मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ हैरत की बात तो ये है कि जो बहरीन के तलबा यहाँ पे जो 18-19 साल की उम्र पे जो इंग्लिस्तान में आए हुए पढ़ने के लिए, उन्होंने एक छोटा सा मुजाहरा किया था इसी सिलसिले में, जो बहरीनी शहरी वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे। आपको हैरत होगी कि इनके बहरीन के हुकूमत के जासूस यहाँ के ऊपर, उन्होंने उनके लड़कों की बच्चों की तस्वीरें खींची और उसके बाद उनकी जो फैमिली से उनके खानदान के लोगों को वहाँ हिरासत में लिया बहरीन में, और उनके साथ बहुत सख्ती और तशद्दुद और उनकी उनके साथ यानी मार पिटाई वगैरह जो भी कुछ करना चाहिए किया, और फिर उन लड़कों से ये कहा कि तुम्हारे जो वजीफे जितने मिल रहे हैं उनको बंद कर दिया और उनसे कहा कि आप फौरन वापस बहरीन आएं। अब ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको इतनी फिक्र है कि वहाँ जाएंगे तो उनके साथ क्या बुरा सुलूक, ये तो बिल्कुल एक तरह का यानी ये जो टेरर जो दहशत फैलाने वाली बात है कि उन्होंने बाहर जो उनके शहरे रहे उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो एक किसी पुरअमन मुजाहरे में हिस्सा ले सकें बाहर के ममालिक में, जबकि यहाँ पे।
सिद्दीक साहब, मैं आपकी बात को रोककर आप ही से सवाल करना चाहूंगा, आपकी बात को रोककर आप ही से सवाल करना चाहूंगा कि ये तो रही बहरीनी हुकूमत की तरफ से कार्रवाई, लेकिन बहरीनी हुकूमत ने बाज उन तलबा को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहे थे और जिसमें बाज के बारे में ये कहा गया कि वो पायलट बनना चाह रहे थे, पायलट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, हवाबाजी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, उनके सिलसिले में बरतानिया हुकूमत से कहा गया कि इनको अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिए, तो बरतानिया की हुकूमत जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार समझती है अमरीका के साथ मिलकर, उसने बहरीन की हुकूमत पर के कहने पर क्यों कर तलबा को जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, हवाबाजी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, उनको निकाल दिया?
वो तो देखिए, अगर बहरीन जो कोई रहा हुआ उसको इल्म होगा कि बहरीन तो ठीक है 1971 में आज़ादी उसको मिल गई थी, लेकिन वो इंग्लिस्तान से, लेकिन वो अभी भी पूरे एक तरह का बरतानिया की कॉलोनी है, और वो आपस में मिल के सारे इनके जितने भी जो इस किस्म के प्लान्स बनते हैं वो आपस में मिल के बनते हैं। इस सिलसिले में मुझे तो कोई हैरत नहीं है कि उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड में जो एविएशन के अकेडमी है और जो एक बहरीन की भी थी उसमें, जैसा आपने फरमाया उनके तलबा को उन्होंने निकाला, लेकिन कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं खासतौर पर मैनचेस्टर के नज़दीक कि जहाँ तलबा के वजीफे बंद हो गए हैं, और जबकि बहरीन हुकूमत ने उनको वापस बुलाया, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खासतौर पर साल्फर्ड और मैनचेस्टर, उन्होंने कोशिश की है कि किसी सूरत से उन बच्चों की उन तालिब इल्म की मदद की जाए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें, और उम्मीद है कि उस दौरान में हालात बेहतर हो जाएं और फिर अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस जा सकें। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मुझे तो कोई हैरत नहीं है कि बरतानवी हुकूमत ने वही किया जो बहरीनी अथॉरिटीज ने उनसे कहा।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब अहमद खलीली साहब। इस बड़े पैमाने पर बहरीन में मसाजिद को शहीद किया गया, क़ुरान करीम के नुस्खों को आग लगाई गई, मदरसों पर स्कूलों पर हमला किया गया, यलगार की गई, हत्ता मजहबी जो इज्तमात हैं वो भी नहीं होने दिया जा रहा है, अस्पतालों में नर्सों को गिरफ़्तार किया गया है, आयात अल-क़ुरमज़ी जैसी शायरा को गिरफ़्तार करके इंतहाई बदतरीन और वहशियाना तरीक़े से जिंसी ज्यादती करके शहीद किया गया है। ये तमाम चीज़ें दहला देने वाले वाक़यात क्या अमरीका और इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनको नज़र नहीं आ रही हैं?
आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। बहरीन के हालात हमें एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जह करते हैं, वो ये कि लोगों ने बहरीन के हालात के ताल्लुक से दोगला रवैया अपना रखा है, खाह वो बड़ी ताकतें हों, खाह वो इंसानी हकूक की तंजीमें हों, खाह वो आलमी इदारे हों, इन सब लोगों ने दोगले रवैया अपना रखे हैं। ایسے ادارے جو خود کو انسانی حقوق کا حامی کہتے ہیں، ان لوگوں نے ایسے عالم میں جبکہ بحرین میں ساری حدود پار کر دی گئی ہیں، ساری حدود پار کر دی گئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عالمی ادارے ایسے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے بولتے ہیں، اور جہاں ان کے آقاؤں کا مفاد نہیں ہوتا نہیں بولتے ہیں۔ بحرین میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بحرین میں جبکہ انسانوں کے ابتدائی ترین حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، بیماروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نرسوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ لیکن انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو کہ اپنے آقاؤں کو خوش رکھنا چاہتی ہیں، اور عالمی ادارے جو کہ اپنے آقاؤں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، وہ قرآن سوزی پر بھی خاموش ہیں، انسانوں کی گرفتاری پر بھی خاموش ہیں، بے گناہوں کے قتل عام پر بھی خاموش ہیں، کیونکہ انہیں صرف اپنے آقاؤں کے مفادات کا خیال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ٹیری جونز نامی ایک بیوقوف پادری نے کیا کیا، ایک قرآن جلایا تو ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، ساری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، لیکن بحرین میں سعودی عرب اور آل خلیفہ کے افواج نے دسیوں قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کیے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کی ہے، امام بارگاہوں کی بے حرمتی کی ہے، لیکن اس پہ دنیا کچھ نہیں بولی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ مختلف اداروں، مختلف حکومتوں نے دوغلے رویے اپنا رکھے ہیں۔ دوغلے رویے اپنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیں کچھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری امت امت واحدہ ہے، ہماری امت ایک امت ہے، ہمارے شعار ایک شعار ہے، قرآن ہم سب کی کتاب ہے، مسجد ہم سب کا، ہم سب اس کو خدا کا گھر مانتے ہیں، دین اسلام ہم سب کا دین ہے، تو کیا اس کی توہین کی جائے تو ہم کو خاموش رہنا چاہیے؟ ہم کو آیا ان چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے یا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ لہذا یہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خاموش ہیں وہ دو
معمولی سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں کسی جانور کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ مغربی ذرائع ابلاغ دو دو دن، تین تین دن اس پر واویلا مچاتے رہتے ہیں۔ 14 فروری سے لے کر آج مئی کی اتنی تاریخ ہو گئی ہے، مغربی ذرائع ابلاغ نے بالکل بائیکاٹ کیا ہے بحرین کے واقعات کا، کیوں؟
جی وہی جو میں پہلے عرض کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات سنی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے جو اس وقت بول رہے تھے کہ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ لوگ واقعی سنسیئر ہیں اپنی ان باتوں میں۔ جیسے ابھی مثال دی جا رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انگریز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جمہوریت اور عالمی جو حقوق ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار، لیکن یہی ان کا رخ اگر آپ دیکھیں اس وقت جب یہ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں، کسی ملک کے اقتصادیات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو اس وقت ان کا اصل چہرہ اس وقت نظر آتا ہے۔ یہ ہم جو چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں یہ واقعی شور مچا رہے ہیں، وہاں انسانی حقوق کی تلفی ہو رہی ہے، یہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے، محض ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہمارے لیے کر دیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے۔ تو بحرین میں ان کے مفادات اس قدر زیادہ ہیں، ان کے ہوائی اڈوں سے لے کے وہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک خاص گروہ کے سپرد انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کی سپرویژن اسرائیل کے سپرد کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو پتا چلے گا بعد میں کہ اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ کتنی تھی ان ساری چیزوں میں، اس نے کیا کیا کچھ پرووائڈ کیا ہوگا۔ مجھے بالکل اس بات میں کوئی شبہ یا کوئی ایسی کوئی تشویش نہیں ہوگی اگر یہ کبھی معلوم ہو جائے آپ کو کہ اسلحہ سے لے کے انٹیلیجنس تک اسرائیل نے پرووائڈ کی ہوگی ان خلیفاؤں کو کہ کس طرح سے آپ کچھ لیں اس جو یہ چل رہی ہے لہر جمہوریت کی۔ اس لیے کہ ان کے مفاد جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، نہ ان کو انسانی جانوں کی پرواہ ہے اور نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ جب ان کا مفاد وہاں پہ ایٹ سٹیک نظر آتا ہے، خطرے میں نظر آتا ہے، تو شور مچا دیتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ انسانی حقوق کی پہم پیمالی ہو رہی ہو वहां पे ये खामोश रहते हैं, इसलिए कि उस वक्त इनका ये ख्याल होता है कि ये हमारे मफाद के खिलाफ है ये बात, अगर हम यहाँ इस वक्त इस हुकूमत को डामाडोल करें या कुछ और यहाँ पे ऐसी कोई तहरीक को सपोर्ट करें जिसके नतीजे में ये जो हुकूमत है ये इसका तख्ता उलट जाए, और चूंकि ये हमारे मफाद में नहीं है तो इसलिए इस पर खामोशी बेहतर है। अच्छा, अपने अवाम को ये जो खामोश कराने का तरीका इख्तियार करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अवाम में भी तो ये बेदारी होती है, वो पूछते हैं सवाल अपने इलेक्टोरल जो जिनको वो मुंतखब करते हैं नुमाइंदों से कि वहां क्यों हो रहा है और यहाँ क्यों हो रहा है, तो वो फिर ये मिसालें देते हैं, जैसे ये भी मिसालें होती हैं कि वो दरअसल ये बात है कि ये उनके अपने मसाइल हैं, हम किस हद तक उनमें दखल दे सकते हैं, वो खुद जमहूरियत नहीं चाहते, हम कैसे उनमें दखल अंदाजी कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया,
वो सारा सीन। जी
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ अगर वक्त मिला। अहमद खलीली साहब, अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अभी दो दिन कबल आले खलीफा की हुकूमत से कहा है कि आप अवामी मुतालबात पर तवज्जो दें और इंसानी हकूक की जो पायमाली हो रही है इसको बंद करें। फरवरी से लेकर अब तक खामोश थे और सऊदी अरब की फौजी मुदाखलत को वाइट हाउस ने जायज़ करार दिया था। अब क्या हो गया अमरीकी सदर को कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आवाम के मुतालबात को तस्लीम किया जाए और माना जाए, तवज्जो दी जाए?
मैं अर्ज कर रहा हूँ,
मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि मगरबी मुल्कों की दोगली पॉलिसियां इस वजह से हैं कि वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं, जहां उनके मफादात होते हैं वो इंसानी हकूक का नाम लेते हैं और अपने चेहरे पे इंसानियत का दुख दर्द ले आते हैं। मगरबी ममालिक की कोई बात कबूल नहीं की जा सकती क्योंकि वो हमेशा दोहरी बातें करते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मगरबी ममालिक हर उस मौके पर जब वो आलमी राय आम्मा को अपने साथ करना चाहते हैं वो इंसानी हकूक की बात करते हैं, वो इंसानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहां उनके मफादात खतरे में होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। इसकी एक मिसाल आप बहरीन में देख रहे हैं। देखें, हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सितम दीदा कौमें उठ खड़ी होंगी और अपने हुकूक हासिल करके रहेंगी, लेकिन अमेरिका जो बहरीन में अपने मफादात को खतरे में देख रहा है उसने बजाहिर ये बात कही है बहरीन से कि इंसानी हकूक की पामाली को रोकें, लेकिन दूसरी तरफ से वो मिल्लत बहरीन की पामाली की हिमायत कर रहा है और अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने पिट्ठुओं की हिमायत कर रहा है। और अगर इन लोगों की अगर आप तारीख देखें, इन मुल्कों की अगर आप तारीख देखें तो आपको मालूम होगा कि इनको मगरिबी ममालिक ने ही बनाया है और यहाँ के हुक्मरानों को मगरबी ममालिक ही बरसरे इख्तदार लेकर आए हैं। बिनाबरी हम ये कह सकते हैं कि पिट्ठू हुक्मरानों का हाथ मगरिब के हाथ में है।
बहुत शुक्रिया खलीली साहब। सिद्दीकी साहब, आप सभी हम माजर चाहते हैं, शुक्रगुजार हैं। एक मिनट का सवाल मैं डॉक्टर असलम सैयद साहब से कर लेना चाहता हूँ। हाँ, तो सिद्दीकी साहब आपसे मैं जवाब चाहूंगा। ये जो तहरीक है बहरीन के आवाम की, इसको एक मिनट के अंदर अलबत्ता जवाब चाहूंगा, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और कितना दिन लगेगा जब आवाम अपनी तकदीर का फैसला खुद अपने हाथ में लेंगे?
मुझे ये लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा और वो जैसा कि हमने बहरहाल जाहिरी तौर पर मिस्र में देखा होते हुए, वो मुझे नज़र अभी समझ नहीं आता कि इतने अरसे कम अरसे में यहाँ पे तब्दीली आएगी, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि अगर इस किस्म के मज़ाहरा चलते रहे किसी भी लेवल के ऊपर اور سعودیوں کے اوپر صحیح طرح کا دباؤ پڑا, تو امید یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ خلیفہ کی جو ان کی جو آل خلیفہ ہیں ان کا ختم ہونا ضروری ہے. اور اصل میں چونکہ امریکہ کی ففتھ فلیٹ وہاں پہ موجود ہے اور ان کے بیسز ان کے پاس ملے ہوئے ہیں, وہ امریکہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہے گا, اور جب تک امریکہ وہاں پہ موجود ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو حکومت کی تبدیلی کو وہ پسند نہیں کریں گے, کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی وہ سب سے پہلے امریکہ کے ففتھ فلیٹ سے کہے گی کہ
بہت شکریہ. امریکہ چاہے یا نہ چاہے, عوامی قوت کے سامنے وہ عوام جنہوں نے اللہ پر اور اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے تحریک شروع کی ہے, آل خلیفہ کی پٹھو حکومت دوام نہیں لا سکے گی اور عوام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے اور امریکہ کو جل یا بدیر اس علاقے سے ذلت آمیز طریقے سے نکلنا ہی ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.